प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप और श्लोक क्रमांक 1 से 8 पर हम आज चर्चा करेंगे। श्री शुक उवाच तस्याम स पांचजन्याम वै विष्णुम आयो प ब्रूहितम ब्रूहितः हर्यश्व संज्ञान युतम पुत्रान जन यद्विभूः तस्याम स पांचजन्याम वै विष्णुम आयोपब्रूहितः हर्यश्व संज्ञानयुतम् पुत्रान् जनय द्विविभू पुत्रान् जनय द्विभू। श्री शुक उवाच तप्स्यां स पांचजन्यां वै विष्णुम् आयोपब्रूहितः हर्यश्व संज्ञानयुतम् पुत्रान् जनयद्विभुः। श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा तस्याम उस सह प्रजापति दक्ष पांचजन्याम पांचजनी नामक अपनी पत्नी वही निश्चित ही विष्णु माया उपब्रूहितः भगवान विष्णु की माया द्वारा सक्षम बनाया गया। हर्यश्व संज्ञान हर्यश्व नामक अयुतम 10,000 पुत्रान पुत्रों को अजनयत जन्म दिया विभुः शक्तिशाली होने से। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर प्रजापति दक्ष ने पांचजनी यानी उसकी पत्नी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन ये पुत्र हर्यश्व कहलाए। अगले श्लोक का सम अनुवाद पढ़ते जाएंगे ध्यान से सुनेगा। पश्चिम में जहाँ सिंधु नदी सागर से मिलती है नारायण सरस नामक एक महान तीर्थस्थान है। वहाँ पर अनेक मुनि तथा आध्यात्मिक चेतना में उन्नत अन्य लोग रहते हैं। उस तीर्थस्थान में हर्यश्वगण यानी ये जो 10,000 पुत्र हैं नियमित रूप से नदी का जल स्पर्श करने और उसमें स्नान करने लगे। धीरे धीरे अत्यधिक शुद्ध हो जाने पर वे परमहंसों के कार्यों के प्रति उन्मुख हो गए। फिर भी चूंकि उनके पिता ने उन्हें जनसंख्या बढ़ाने का आदेश दिया था अतः पिता की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। एक दिन जब महर्षि नारद जी ने इन बालकों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए ऐसी उत्तम तपस्या करते हुए देखा तो वे उनके निकट आ गए। महामुनि नारद जी ने कहा कि हे हर्यश्वो तुमने पृथ्वी के छोरों को नहीं देखा है। एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है उसमें जहाँ पर एक छेद है उसमें से भीतर घुसने वाला निकलकर कभी बाहर नहीं आ सकता। कृपया ध्यान से सुनिए मैं दोबारा पढ़ता हूँ। तुमने पृथ्वी के छोरों को नहीं देखा है। एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है ये एक बात हो गई। दूसरी बात है कि उसमें जहाँ पर छेद है उस छेद से भीतर घुसने वाला कभी बाहर निकल नहीं सकता दूसरी बात। तीसरी बात वहाँ पर एक स्त्री है, वो अत्यंत कुमार्गिनी यानी असाध्वी यानी बहुत ही पापी या गलत चरित्र की है, और वो नाना प्रकार के आकर्षक वस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करती है, और वहाँ जो पुरुष होता है वो उसका पति है। उस राज्य में एक नदी है जो दोनों दिशाएं में बहती है, तो समझ में आया? उस नगर में एक नदी है जो दोनों दिशा में बहती है, वो 25 पदार्थों से बना हुआ एक अद्भुत घर है, और एक बात, उसमें एक हंस है जो नाना प्रकार की ध्वनियां करता है, और एक स्वतः घूमने वाली वस्तु है जो तेज शूरों तथा वज्रों से बनी हुई है, मतलब एक चक्र समान ऐसी वस्तु है, चक्र जैसी में तीक्ष्ण उसके नोक है और बहुत सारे नोक है उसके अंदर, वज्रों से बनी हुई है, बहुत कठिन वस्तु है वो। तुम लोगों ने इन सबों को नहीं देखा है, इसलिए तुम लोग उच्च ज्ञान से रहित अनुभवहीन बालक हो। तो तुम फिर किस तरह से संतान उत्पन्न करोगे? तो इस श्लोक का भी तात्पर्य दिया है, वो हम पढ़ते हैं शांति से। नारद मुनि ने देखा कि हर्यश्व नामक बालक पहले से शुद्ध हो चुके थे, क्योंकि वो तीर्थ स्थान में रह रहे थे। एक तरह से मुक्ति पाने के लिए पाने ही वाले थे, तो फिर उन्हें उस गृहस्थ जीवन में बनने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया जाए जो इतना अंधकारमय है कि एक बार प्रवेश करने पर इसे छोड़ा नहीं जा सकता। इस रूपक के माध्यम से यानी कि जो अलंकारिक भाषा जो है इसके माध्यम से नारद मुनि ने उन्हें इस पर विचार करने के लिए कहा कि गृहस्थ जीवन में बंधने के लिए उन्हें अपने पिता के आदेश का पालन क्यों करना चाहिए। परोक्ष में नारद मुनि ने उनसे अपने हृदय के भीतर परमात्मा या भगवान विष्णु की स्थिति ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि तभी वे सही अर्थ में अनुभवी होंगे। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति इस भौतिक परिवेश में बुरी तरह लिप्त है और अपने हृदय के भीतर नहीं झांकता है, वो अधिकाधिक माया से बद्ध हो जाता है। नारद मुनि का उद्देश्य प्रजापति दक्ष के पुत्रों का ध्यान सामान्य किंतु प्रजनन यानी बच्चे उत्पन्न करने के जटिल मामलों से न उलझाकर आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर मोड़ना था। मतलब नारद मुनि उनको सामान्य जो कार्य होता है जो आम जनता करती है उससे परावृत्त करके उन्हें भगवान के विषय में अनुभूति साक्षात्कार जानने का। हरे कृष्ण। ऐसे ही सलाह प्रह्लाद महाराज ने अपने पिता को दी थी। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो युद्धरिमाश्रयेता। गृहस्थ जीवन के अंधकार पूर्ण कुएं में सदैव मनुष्य चिंताओं में भरा रहता है, क्योंकि वो नश्वर शरीर धारण किए रहता है। यदि मनुष्य अपने को इस चिंता से मुक्त करना चाहता है तो उसे तुरंत गृहस्थ जीवन त्याग करके वृंदावन में भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। नारद मुनि हर्यश्वों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश न करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि वे पहले से आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत प्रगत थे, तो फिर वो इस तरह से क्यों बद्ध हो जाएं, यानी इस तरह से क्यों फंस जाएं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोगों से विनती है कि अगर आपको आज का श्लोक ठीक से समझना है, यानी आज के जो 8 श्लोक दिए गए हैं, तो आपको इस अध्याय के 25वें श्लोक को आने तक रोज आकर यहाँ पर ध्यानपूर्वक कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि एक श्लोक का जो विवरण है ये अगले वाले 25वें श्लोक तक दिया गया है। तात्पर्य में नहीं, उस श्लोक में ही सुखदेव जी महाराज एक एक श्लोक में, जैसे मैंने बताया कि ये बात सुनो, है पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, ऐसे हर एक बात का, जैसे एक हंस है, पृथ्वी के छोर है, और ऐसा एक राज्य है, ऐसा एक बिल है, एक नदी है दो तरफ बहन चलने वाली, ये सभी एक 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 वस्तु का उन्होंने अर्थ समझाया है स्वयं सुखदेव जी ने, और उस पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। इसलिए आज के प्रवचन का पूरा अर्थ समझना है तो आपको 25वें श्लोक तक रोज आना पड़ेगा, और ध्यानपूर्वक उसका क्या लिंक है, क्या संदर्भ है, उसको आपको समझना होगा, तब जाकर ये जो अलंकारिक काव्यमय भाषा का प्रयोग नारद मुनि कर रहे हैं उसका पूरा अर्थ आपको पता चलेगा। फिर भी हम संक्षेप में आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे। संक्षेप ये है कि आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान जो हैं वो अनेक अवतार लेते हैं या अनेक रूपों में अपने आप को विभाजित करते हैं। गौलोक में पहले बलराम जी बन जाते हैं, बलराम जी के बाद में चतुर्व्यूह का निर्माण होता है, चतुर्व्यूह के बाद में फिर संकर्षण भगवान का निर्माण होता है, उसके बाद में नारायण भगवान का निर्माण होता है, नारायण भगवान के बाद में सबसे पहले महाविष्णु महापुरुष का अवतार होता है, और महापुरुष महाविष्णु के द्वारा भौतिक सृष्टि का जो नियंत्रण है वो शुरू होता है। नारायण तक सभी व्यक्ति जो है वो गौलोक यानी विष्णु भगवान का जहाँ निवास है, वैकुंठ है, आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ पर ही अपना नियंत्रण करते रहते हैं। लेकिन महाविष्णु जो महत्तत्व यानी जो बादल है माया का, उसके अंदर जो छाया में जितने लोग आते हैं, जितने लोक आते हैं, उन सब लोगों का एक व्यक्ति का नियंत्रण है, वो महाविष्णु है। फिर उनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, उनके शरीर के छिद्रों से बीज रूप में, फिर वो बीज रूप से उसका विकास होकर वो पूर्ण रूप में ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, विकसित होते हैं, और हर एक ब्रह्मांड में उस महाविष्णु के एक स्वरूप प्रवेश करते हैं जिनका नाम है गर्भ उदकशायी विष्णु। इसका मतलब होता है कि ऐसे अनंत गर्भ उदकशायी विष्णु हैं और एक ही महाविष्णु हैं, क्योंकि हर एक ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक एक गर्भ उदकशायी विष्णु है, और उन गर्भ उदकशायी विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, और किस ब्रह्मांड में 4 मुख वाले, किसी में 10 वाले, किसी में 1000 वाले, किसी में 100 वाले, किसी 10,000 वाले, किसी में 1,00,000 वाले, 10,00,000 वाले सर जिनके कंधे पर है, ऐसे ब्रह्माओं का निर्माण होता है। यानी कि ऐसे ब्रह्मा भी अनंत हैं, जितने प्रकार के वहाँ गर्भोत्साही विष्णु है उतने ब्रह्मा भी अनंत हैं, और वो ब्रह्मा के द्वारा फिर सृष्टि का निर्माण होता है। एक जो निर्माण है उसको सर्ग कहते हैं, सर्ग यानी प्राथमिक निर्माण, जो बीज रूप में अभी ब्रह्मांडों को जन्म दे रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, और उस विकसित हुए हुए एक ब्रह्मांड में या सारे ब्रह्मांडों में वो जो ब्रह्मा है वो भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनकी कलाओं को समझते हैं, उनका जो उपदेश है आदेश है उसको समझते हैं, और उस ब्रह्मांड में 14 लोकों में सृष्टि का निर्माण करते हैं। दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक होती है अचर सृष्टि जो एक जगह पर है, जैसे पेड़ हैं, पर्वत हैं, और एक जगह है चर सृष्टि यानी कि जीव हैं जो चलते हैं। तो इसमें जो 84,00,000 योनि है, देवताओं से लेकर वो जो कीटक होता है ना इंद्रगोप नाम का, वो सब जितने भी जीव हैं 84,00,000 योनि वाले, वो सभी जीवों का वो निर्माण करते हैं यानी कि जन्म देते हैं। तो ब्रह्मा जी का कार्य क्या हुआ, प्रजनन यानी निर्माण करना। शिव जी का कार्य हुआ, जो उनको निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी स्वयं, उनका कार्य है विनाश करना। जब उसका समय आता है हर एक चीज़ का एक समय होता है। भौतिक दुनिया में हर एक चीज़ शुरुआत होती है, उसका अंत होता है। जब इन लोगों का अंत का समय आता है, दो प्रकार के समय आते हैं। एक प्रकार है मिनी, यानी चार युगों के बाद एक दिव्य युग समाप्त होने पर एक छोटा सा प्रलय होता है, उसमें अचर सृष्टि का नाश नहीं होता है, चर सृष्टि नष्ट हो जाती है और अचर सृष्टि वैसे रहती है। फिर ब्रह्मा जी के एक निद्रा पूर्ण होने के बाद में फिर चर सृष्टि का वापस निर्माण हो जाता है, वो जीव फिर दोबारा आते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। ये बहुत बड़ा आयोजन है। और फिर ये पूरे ब्रह्मांड का जब समय समाप्त होता है तो ये पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है 14 लोकों के साथ, ब्रह्मा जी के साथ, उसको महाप्रलय कहते हैं। और वे सारे महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, सारे जीव भी बीज रूप में अंश रूप में महाविष्णु के शरीर प्रवेश करते हैं, फिर दोबारा निर्माण होता है, फिर वो दोबारा वो जीव अपने कर्मों के अनुसार, ब्रह्मा जी के आयोजन के अनुसार, यमराज के आदेश के अनुसार, ब्रह्म विष्णु की इच्छा के अनुसार अपने अपने लोकों में अपने अपने योनि में जन्म लेते हैं। ऐसा ये पूरा बड़ा विशाल और बहुत ही सूक्ष्म तरीके का निर्माण कार्य है। तो इस विशाल कार्य में एक हम लोग अभी अपना ब्रह्मांड लेंगे और उस ब्रह्मांड में अपने ब्रह्मा जी जो हैं, हमारे ब्रह्मांड में चार प्रमुख दिशाएं हैं और चार उपदिशाएं हैं और दो ऊपर नीचे, मिलकर 10 दिशाएं हैं, लेकिन चार प्रमुख दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। तो ये चार दिशाओं के लिए ब्रह्मा जी के चार मुख हैं और हमारे पास चार मुख वाले ब्रह्मा जी हैं और वो इस ब्रह्मांड में 7 स्वर्गलोक, 1 पृथ्वीलोक और 6 नीचे वाले लोक, इनमें योग्य जो जीव रहने वाले हैं उनका निर्माण करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी एक सर्व प्रमुख प्रजापति हैं, सबसे बड़े प्रजापति ब्रह्मा जी हैं, फिर वो अनेक प्रजापतियों को जन्म देते हैं, जैसे दक्ष राजा हैं, जैसे कश्यप मुनि हैं, और इनको अपने पूरे निर्माण के कार्य में एक एक भाग देते हैं कि भाई कश्यप मुनि आप अभी सर्पों को और पक्षियों को जन्म देना, फिर दक्ष राजा को फिर आदेश देते हैं प्रजा को विस्तारित करना, ताकि जो जीव अभी तक बद्ध अवस्था में हैं, जो मुक्त अवस्था में नहीं है, जिनको यहाँ पर कुछ समय बिताना है, अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करना है, उनको आने का मार्ग बनाना है, जो जो उनके लिए योग्य योनि बनाई गई है हिसाब किताब के अनुसार उनको लाना है। तो ये जो है ये कृष्ण के विष्णु के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी ये कार्य करते हैं। वो अपने मर्जी से किसी को किसी योनि में डालते नहीं हैं, उनको जो रिकॉर्ड दिया गया है, जो पेपर दिया गया है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में कैसा होता है, हर एक पेशेंट का एक कार्ड होता है और वो कार्ड के ऊपर ही जो लिखा है वही खाना मिलेगा उनको, डाइट, और वही दवा मिलेगी और उस प्रकार का ड्रेसिंग किया जाएगा, उसी प्रकार का दवाई दी जाएगी उनको। उस प्रकार से हर एक जीव का एक कार्ड है चित्रगुप्त के पास, उसमें लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति को देवता बनाना है और वो भी देवताओं के साथ में से इस लोक में बनाना है, इस व्यक्ति को कुत्ता बनाना है पृथ्वी पर, इस व्यक्ति को पृथ्वी पर गरीब घर में एक मनुष्य बनाना है, और इस व्यक्ति को सर्प बनाना है, इस व्यक्ति को मच्छर बनाना है, और इन व्यक्तियों को नरक में भेजना है, मतलब जो नीचे के लोग हैं, लोक हैं 6, जो राक्षस दानव और दैत्य वहाँ रहते हैं उस योनि में डालना है। ऐसा बहुत बड़ा विशाल कार्य होता है, अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, जो जो जीव का कर्मों का हिसाब है उसके अनुसार उसको वहाँ वहाँ भेजने का व्यवस्था करते हैं, लेकिन उनको वहाँ भेजने के लिए किसी के द्वारा जन्म लेना आवश्यक होता है, तो उसके लिए वो प्रजा का निर्माण करते हैं और बाकी सारे जीवों को उनके माध्यम से जन्म देते हैं। तो ये होगी भूमिका हमारे आज के डिस्कशन की। तो अभी क्या हो रहा है, अभी राजा दक्ष जो हैं वो एक प्रजापति हैं अनेक प्रजापतियों के बीच में, और दक्ष राजा ब्रह्मा जी के कृपा की वजह से बहुत शक्तिशाली हैं, उनके अंदर बहुत सारा शक्ति ब्रह्मा जी ने दे दिया है, क्योंकि उनको बड़ा विशाल कार्य करना है, निर्माण करने का, प्रजनन करने का, पुनरुत्पादन करने का, जीवों को शरीर प्राप्त करा देने का, उनके शरीर का वो निर्माण करने का, उस शरीर में उनको प्रवेश देने का, उनका पूरे जीवन का जो काल है उसमें क्या क्या भुगतना होगा उसका पूरा प्लानिंग अभी प्रजापतियों के द्वारा ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो दक्ष प्रजापति का उद्देश्य क्या है कि मेरे पिता के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसका मुझे ठीक से पालन करना चाहिए, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, उसमें पर्याप्त रूप से भगवान की इच्छा के अनुसार ये कार्य पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा ने भगवान को, भगवान ने हृदय में आदेश दिया था, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, पूरा प्रोग्राम समझा दिया उनको, उनको पूरा अज्ञान था तो पूरा प्रोग्राम समझा दिया क्या करना है आपको, आपके इस दिव्य जीवन काल में जो हिंदी में उसको इंग्लिश में कहते हैं 3 trillion 11 billion, मतलब 311 अब्ज वर्षों के काल में आपको क्या करना है, ये सब कुछ समझा दिया उनको। फिर उन्होंने ये कार्य जो है विभाजित करके प्रजापतियों को समझा दिया है। अब प्रजापति दक्ष जो है वो बड़े उत्सुक हैं अपने कार्य करने के लिए, और उन्होंने इस प्रयास में अपनी पत्नी के माध्यम से दिव्य शक्ति के अनुसार, यहाँ कहा गया है कि ब्रह्मा जी से दिव्य शक्ति प्राप्त करते हुए उन्होंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए हैं अपने पत्नी के, जिनका नाम पांचजन्य है, पांचजन्नी उनकी पत्नी का नाम है। और उनको आदेश दिया है जाओ आप जंगल में और मेरे लिए मेरे आदेश के अनुसार पुत्र निर्माण करने का, प्रजनन करने के लिए जाइए। अभी आप लोग सोचेंगे अरे प्रजनन करना है तो जंगल में क्यों भेज रहे हैं, विवाह कर दो उनका सब अनुरूप लड़कियां देखो उनको विवाह करो फिर गृहस्थी बसाओ उनकी, अपने आप प्रजनन हो जाएगा। ये बात बहुत सोचने लायक है कि हमारे वैदिक संस्कृति में बिना तपस्या किए हुए किसी भी व्यक्ति को गृहस्थ बनने का अधिकार नहीं था। हर एक व्यक्ति को या तो गुरुकुल में जाकर गुरु की शिक्षा में रहकर 12 साल कम से कम 18 विद्याओं का अध्ययन करना है, जब गुरुजी सर्टिफिकेट देंगे तो ही आप घर पे आ सकते हो। तो उसके बाद में उसको कहते हैं समावर्तन, समावर्तन विधि यानी पूरी दीक्षा आपको प्राप्त होगी विद्या की, और पूरी होने के बाद में समावर्तन विधि कब होगा, जब आप सब अच्छी तरह से पढ़ लिया है, यानी कि वो दीक्षांत समारोह कह सकते हैं। और समावर्तन के बाद वो घर आएगा, फिर उसके पिताजी उसका विवाह करेंगे, और उन्होंने क्या सीखा है, मेनली विद्या तो सीखी है लेकिन इंद्रियों को दमन करने को भी सीखा है, जो इन्होंने इंद्रिय दमन करने की विद्या प्राप्त कर ली है उन्हीं को ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार है, क्योंकि वो उच्छृंखल तरीके से अनियंत्रित तरीके से इंद्रियों को भोग न करें और पतित न हो जाए, इसलिए उनको ये सब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पहले विद्या अर्जन करना होता है। उसमें से विद्या विभूषित होने के पश्चात आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश मिलेगा, फिर श्रेष्ठ संतान गर्भाधान संस्कार करने के बाद में प्राप्त होगी, फिर वो आगे जाकर अपना अपना कार्य करेगी, प्रचार करेगी, और अपनी मुक्ति का जो उद्देश्य जीवन का है भगवान के धाम को प्राप्त करने का, वो पाने में सफल हो जाएं, ये पूरा उद्देश्य है। जेल का उद्देश्य दो प्रकार का होता है, एक तो दंड दिया जाए अपने गुनाहों का, और एक गुनाहों से निवृत्ति कैसे की जाए, गुनाहों की प्रवृत्ति कैसे नष्ट की जाए, गुनाहों की प्रवृत्ति से निवृत्त कैसे किया जाए उस कैदी को, और शुद्ध बनाकर एक अच्छा नागरिक बनकर शहर में कैसे रह सकता है, ये भी उसका उद्देश्य है, केवल दंड देने का उद्देश्य नहीं है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा ये जो जेल दुर्ग निर्माण किया गया है उसका एक उद्देश्य है कि अपने कर्मों का हिसाब किताब हो जाए, लेकिन साथ साथ में जीव जब इस कर्मों का भुगतान कर रहा है उस समय उसके मुक्ति का मार्ग भी बने, उसको प्रचार भी किया जाए, वो भगवत भक्ति को भी प्राप्त करे, इंद्रियों को भी शुद्ध करे, दमन करे, शमन करे, और फिर भगवान की भक्ति में रत होकर जीवन के जो परम उद्देश्य हैं भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करना, वो प्राप्त करके भगवत धाम चला जाए। ये दोनों का कार्य हमारी सृष्टि में साथ साथ चलते रहता है। इसलिए आश्चर्यवत ये 10,000 पुत्र जंगल में जाते हैं, और जंगल में कौन रहता है, शेर रहता है, खूंखार जानवर रहते हैं, लेकिन साथ साथ संत लोग भी रहते हैं। क्यों रहते हैं जंगल में संत लोग, शहर में क्यों नहीं रहते? उसका कारण है कि शहर जो है, नगर जो होता है, वो रजगुण का प्रधान स्थान होता है। यहाँ पर लोग ऐसे कार्य करते हैं कि धन के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, भोजन के लिए और उपभोग करने के लिए इंद्रात लगे रहते हैं, उनका ऐसी गति है उनके अंदर, तो ऐसे गति वाले वातावरण में भजन नहीं हो सकता है। इसलिए शहर का वातावरण साधना के लिए प्रतिकूल बताया गया है, और जिसमें सत्वगुण है ऐसे जगहों का वर्णन भी दिया है। जैसे एक तो है वन, जैसे जंगल की बात की जा रही है, नदी किनारा, पर्वत का शिखर या पर्वत या सरोवर या तालाब, जलाशय, उपवन, वन, घनघोर वन, ऐसे कई स्थान बताए गए हैं। उसमें विष्णु का मंदिर बताया गया है, उसमें तुलसी की समीपता बताई गई है, ये सब स्थान भजन के लिए अनुकूल है, और साथ साथ में जहाँ भक्त लोग बैठकर भजन कर रहे हैं वो भी स्थान भजन के लिए अनुकूल माना गया है। तो अभी ये वन भी है, और वहाँ वो किसको प्राप्त करते हैं, परमहंस को देखते हैं कि वहाँ पर वो भजन कर रहे हैं। पहले बताया गया है कि उन्होंने जल को स्पर्श कर करके अपने आप को शुद्ध किया, मतलब वो जो नदी वहाँ पर वर्णन किया है ना, वो पवित्र नदी है। नदी का गुण होता है कि नदी हमेशा इस विश्व में आती क्यों है, सबसे पहले किसी भी नदी जो आपको पता है या पता नहीं है, हर नदी दिव्य होती है, और हर नदी इस पृथ्वी में जीवों को कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए आती है। जल देने के लिए तो आती है, सिंचन करने के लिए और भोजन देने के लिए, लेकिन उसके ऊपर का उद्देश्य है कि हर नदी इस विश्व में, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, या तो हमारे गाँव की कोई नदी हो, वो सब नदियाँ जीव को कर्मों से मुक्त करके शुद्ध करने के लिए आती है। तो इस नदी को स्पर्श करते ही, निरंतर स्पर्श करते ही, स्नान करते ही, ये सारे बालक जो 10,000 थे वो शुद्ध हो गए। अब शुद्ध होने के बाद में जब हमारा हृदय शुद्ध होता है तो क्या लगता है आपको, क्या होता है? कुछ तो होता होगा ना। जब अशुद्ध है तो क्या हो रहा है? अशुद्ध कार्य, भोग के कार्य, लस्ट के कार्य, क्रोध के कार्य, ऐसे झगड़े, द्वेष, राग, इस सारे कार्य हो रहे हैं। जब शुद्ध होता है तो क्या होता है? तुरंत भगवान की ओर हम आकर्षित हो जाते हैं, हमारा मूल स्वभाव जो है उस पर हम आकर्षित हो जाते हैं, उस पर स्थित हो जाते हैं, उसके प्रकार कार्य करने लगते हैं, उस प्रकार का विचार करने लगते हैं, उस प्रकार का संग ढूंढते हैं। जैसे हमारी आत्मा शुद्ध हो जाते हैं तो शुद्ध प्रकार का संग ही हमको मिलने लगता है और ढूंढते भी हम वही हैं। इसको मीठा चाहिए, वो मिठाई की दुकान में जाएगा, तो नमकीन चाहिए तो नमकीन की दुकान में जाएगा। उस प्रकार से एक बार मीठे वस्तु की प्यास लग गई या भूख लग गई तो फिर वो मीठे वस्तु की दुकान में ही जाएगा। उस प्रकार से जैसे आत्मा शुद्ध यानी कि ये मीठी हो गई तो फिर वो जो मीठे लोग हैं उनके संग में जाएगी। नदी का संग करने के पश्चात नित्य रूप में उनका परमहंसों की मुलाकात हो गई, जो उसी वन में रहकर तपस्या कर रहे थे। फिर उनको उनके संग का आकर्षण हुआ और उनके संग में बैठकर उन्होंने तपस्या शुरू किया। तपस्या कर रहे हैं पिता के आदेश के अनुसार संतान निर्माण करने के लिए, लेकिन अभी तपस्या करते करते उनके मन में विरक्ति उत्पन्न हो रही है, जो गृहस्थ आश्रम के प्रजनन के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन वो करते जा रहे क्योंकि वो बहुत आकर्षक है। जो वो कर रहे हैं उसमें उनको बहुत रस आता है, बहुत आकर्षण निर्माण होता है, बहुत रुचि निर्माण होती है, लगाव निर्माण होता है, तो वो लगे रहते हैं उसके अंदर। और उस तपस्या से पुत्र उत्पन्न करने के योग्य बनने के बदले उनके अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो मुक्ति के लिए योग्य है, जब वो मुक्त होने के लिए योग्य हो गए वो। और उस समय पर जब उन्होंने कई हजार साल तपस्या किया इस प्रकार से, वो भी परमहंसों के संग में, अगर अकेले करते तो एक ही उद्देश्य से, अपने जो एक ही उद्देश्य के साथ लोग आए हैं उनके संग से करते तो वो ही सिद्ध प्राप्त करते, उसी के लिए योग्य बन के घर चले जाते। लेकिन वही सब लोग 10,000 लोग मिलकर परमहंसों के संग में कर रहे हैं, इसलिए उनके मन में विरक्ति उत्पन्न होती है, भगवान के धाम की जाने की योग्यता उत्पन्न होती है। और उस स्थिति में जब वो योग्य हो रहे हैं, वहां नारद मुनि आते हैं। अभी नारद मुनि एक गुरु के प्रतिनिधि हैं, स्वयं गुरु हैं, बड़े दिव्य आत्मा हैं, सिद्ध आत्मा हैं, साक्षात्कारी आत्मा हैं, परम आत्मा हैं। नारद मुनि एक अद्भुत देवर्षि हैं, जो देवताओं के भी ऊपर हैं, देवताओं के लोक के हैं, वो देवताओं के लोक में घूमते रहते हैं, लेकिन देवता सभी लोग, ब्रह्मा से लेकर सभी लोग उनका आदर करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र होने पर भी देवर्षि नारद की ऐसी स्थिति है, ऐसा पोजिशन है, इसे सभी लोग उनका आदर करते हैं। और उनकी विशेषता यह है कि नारद मुनि के मन में कृष्ण के लिए प्रेम है और परम शुद्ध जिनका उनके आत्मा है, और परम शुद्ध आत्मा में परम साक्षात्कार हमेशा बना रहता है। जैसे जो वस्तु है उसी सत्य रूप में उनका दर्शन उनको होते रहता है। मतलब हर हमको नारद मुनि मिलेंगे तो हमारा पूरा एक्सरे निकालेंगे, वो अंदर में हमारे क्या है, कितना काम वासना है, कितना क्रोध है, कितना लोभ है, कितना मत्सर है, कितने कर्म है, और कहाँ पर हमारी मन की स्थिति है, क्या चेतना है, पूरा छान मारेंगे वो देखने मात्र से। जैसे उनकी दृष्टि जो है हमारे मांस से निकलकर मन तक, बुद्धि तक, आत्मा तक पहुँचेगी और क्या हमारी स्थिति है वो समझ जाएंगे वो, और उसके अनुसार आपको प्रेरणा देंगे। इसलिए जब हमको गुरु महाराज मिलते हैं तो गुरु महाराज, क्योंकि आपने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया है और वो स्वयं भी गुरुपद के योग्य व्यक्ति है, इसलिए भगवान आपके लिए उनको शक्ति से आवेशित कर देते हैं, जिससे आपकी जो आत्मा की स्थिति है वो गुरु महाराज वैसे के वैसे पढ़ सकते हैं। बहुत बार आपने अनुभव किया होगा जब गुरु महाराज के सामने हम बैठते हैं तो गुरु महाराज जिस प्रकार से हमको देखते हैं तो हमको कभी कभी नज़र झुकानी पड़ती है, क्योंकि उनकी नज़र जो है वो हमारी आँखों से अंदर घुसकर लगता है कि हमारे आत्मा तक वो पढ़ाई कर रहे हैं, आत्मा के अंदर स्टडी कर रहे हैं क्या चल रहा है इसके अंदर। हम सोच रहे हैं कि हम वो हमको देख रहे हैं, हमारे शरीर को देख रहे हैं, चेहरे को देख रहे हैं, लेकिन वो आत्मा का हमारा अभ्यास, आज की स्थिति का अभ्यास करते रहते हैं, उनको सब पता चलता है और वो उसके अनुसार आपको आदेश देते हैं। तो किसी को कहेंगे आप ये सब छोड़कर ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लो, इसको कहेंगे आप गृहस्थ आश्रम अपना लो, किसी को और कुछ उपदेश देंगे, किसी को कहेंगे सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लो, मंदिर में जाके भजन करो या तो यात्रा करके प्रचार करो, और किसी को विवाह करना है तो जाके बोलेंगे संन्यास लो, किसी को संन्यास लेना है तो कहेंगे नहीं आप विवाह करो। इधर भी हमने पढ़ा है शास्त्र में कई बार, उत्तानापाद को तो ब्रह्मचारी बनकर पहाड़ पर रहना था, उसको बुलाया गया आ जाओ नीचे, अच्छी तरह से बहुत पत्नियों को स्वीकार करो, बहुत संतान उत्पन्न करो, राज्य चलाओ, रजोगुण में आके पृथ्वी का भगवान के लिए कार्य करो, ऐसे ही विपरीत संदेश दिया गया है, जैसे अनुकूल लगेगा जिसकी जो योग्यता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम दीक्षा लेते हैं गुरु महाराज से तो गुरु महाराज के प्रति हमको ये श्रद्धा होनी चाहिए कि वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, वो हमारे आगे कल्याण किस में वो भी जानते हैं, हमें किस कार्य में लगाने से हमारी आत्मा का कल्याण होगा वो जानते हैं। ये अगर श्रद्धा नहीं होगी तो गुरु लेके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हम हमेशा ये प्रश्न करते रहेंगे अरे मैं तो यही चाहता हूँ, गुरु महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे, मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ, गुरु महाराज मुझको विपरीत आदेश दे रहे हैं, ये तो मेरे मन के अनुकूल नहीं है, कैसे गुरु जी हैं। लेकिन अगर आपको श्रद्धा है हमारे सद्गुरु पर तो हमको पता होना चाहिए कि गुरु आपको पसंद वाली आज्ञा नहीं देंगे, आपके कल्याण वाली आज्ञा देंगे, जो शायद आपको पसंद हो तो आपका भाग्य है, ना पसंद हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको वो कल्याण वाली आज्ञा का पालन करना होगा श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कि ये साक्षात्कारी व्यक्ति है जिनको मैंने गुरु स्वीकार किया है, इनके आदेश के अनुसार केवल मैं भगवान के अधिक और नज़दीक ही जा पाऊंगा और मेरा कहीं भ्रष्टमय नहीं हो जाऊंगा, मार्ग भ्रष्ट नहीं होगा, ये श्रद्धा होनी चाहिए। तो नारद मुनि वैसे गुरु जी हैं। तो देखते हैं कि ये व्यक्ति, ये सारे 10,000 लोग अभी मुक्ति प्राप्त करने के स्तर पर पहुंच चुके हैं, तो इन लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए गृहस्थ आश्रम में, फिर रजोगुण में, फिर गृहस्थी, फिर पत्नी, फिर बच्चे, फिर उनका रोना धोना, फिर उस समस्याएं, फिर वही बहुत समय का व्यवधान उसमें होगा, फिर वापस विरक्ति आएगी, फिर जाएंगे भगवान की ओर। अभी तो वो स्थिति में है जो पूरे चक्र को पार करने के बाद में गृहस्थ आश्रम के विरक्ति के स्तर पर पहुंच के फिर भगवान के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, वन गमन करने वाले हैं, लेकिन ये तो अभी उस स्थिति में है तो क्यों फिर मार्ग भ्रष्ट होकर पूरा दूसरा चक्कर काट कर आना है वैसे वापस उस स्थिति में आने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने उनको ऐसा आदेश दिया है कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या आपको पता है कि ये सब तपस्या करके आप कहाँ जाने वाले हो। फिर वो ये काव्यात्मक वर्णन कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ मैं बताऊंगा, पूरा बताऊंगा तो 4 घंटे लगेंगे, लेकिन वो उस एक शहर का वर्णन कर रहे हैं, मतलब वो भौतिक जगत है, भौतिक दुनिया है। उसके अंदर एक स्त्री का वर्णन किया है कि बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर सबको लुभाती रहती है वो। नारद मुनि सुखदेव जी बताते हैं कि ये जो स्त्री है जो बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र करके सबको आकर्षित करती है, ये कुबुद्धि है। कुबुद्धि यानी जो भ्रष्ट बुद्धि होती है, उसका वर्णन किया है, क्योंकि भ्रष्ट बुद्धि ही फिर मन को बोलती ये करो वो करो, उधर जाओ, इसको खाओ उसको करो। तो वो बुद्धि के स्वामी जो है वो कृष्ण है, भगवान है, वो बताया कि उसके स्वापति भी वहां पर रहते हैं। और नदी का वर्णन किया है कि दो तरफ कहती है वो, ऐसी कोई नदी होती क्या, इसके आप में पश्चिम में आएंगे तो आप वृंदावन की ओर जाएंगे, दक्षिण उत्तर में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे या तो वो नदी एक ही दिशा में हमेशा बहती रहती है। केवल जब हमारे कन्हैया जी ने मुरली बजाई थी तो वो जो नदी चीरघाट में उसकी लीला है, जब भगवान ने बंसी बजाई थी तो पहले तो नदी को ऐसे गोल गोल घूमने लगी भंवरों की तरह, और फिर उल्टी जाने लगी, और हमारे चंद्र सूर्य भी उल्टी दिशा में भ्रमण करने लगे। वो तो कभी कभी बचती है मरली, रोज नहीं बचती है जब भगवान को रास का मन होता है, लेकिन हमारे दृष्टि में तो वो सब दिखता नहीं, हमें तो यमुना नदी दिख रही है और वही की दिशा में जा रही है यहाँ से। तो वो दो प्रकार की, दो दिशा में बहने नदी कौन सी है, जन्म मृत्यु वाली नदी, इसमें पड़ेंगे तो जन्म होगा और मृत्यु भी होगी, उसी में आप घूमते रहेंगे। फिर वो चक्र का जो वर्णन किया उसमें बहुत तीक्ष्ण नोकदार उसके अंदर लगे हुए हैं वज्र की तरह, वो काल का चक्र है। वो कहता है कि वो धीरे धीरे क्यों ना हो बड़ी अच्छी से सबको पीस देता है। चक्की कैसी होती है, जब गेहूं डालते हैं उसके अंदर तो एक क्षण में आटा बंद करने आता है, बहुत देर घुमाते हैं उसको, बहुत देर घुमाते हैं, बहुत कभी हाथ डाल के ऐसे ऐसे भी करते हैं, सबको ठीक से घुमा घुमा कर काफ़ी देर के बाद में उसमें बहुत चिकना आटा जो है वो बाहर निकलता है। फिर हमारे घर में जो करते हैं ऐसा, तो बीच वाले जो है ना गेहूँ, सोचते कि हम कितने सुरक्षित हैं, हमें नहीं पीसा जा रहा है। फिर वो दीदी क्या करती है, वो पूरा उठाती है ऊपर से, बीच वाले सबको साइड में फैला देती है, फिर वापस उसको पीसती है। तो काल का चक्र जो है, हो सकता है बहुत धीरे धीरे पीसता हो, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से पीसता है वो, बहुत महीनता से। ऐसे सारे वर्णन किए गए हैं और उसको सारांश उसका ये है कि आप एक ऐसे जगत में प्रवेश करने जा रहे हो जिसमें केवल दुख ही दुख है। ये सारे चीज में गुजरने के बाद में आपके गोद में केवल दुख ही आएगा, तो क्यों आप जा रहे हैं इसके अंदर? तो ये आदेश अभी देखो, नारद मुनि जैसे साक्षात्कार संत है, उनके वाणी में कितनी शक्ति है। हाँ, उन्होंने कितने लोगों का उद्धार किया है, देखो आप, कितने लोगों का हृदय परिवर्तन किया है। वाल्मीकि मुनि का किया है, मुरारी जो शिकारी था उसका किया है, और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, आप नाम लेते जाओ, किस किस महान महान लोगों का उन्होंने उद्धार किया है। कितनी शक्ति है उनकी वाणी में। वो कह रहे हैं कि आप छोड़ो इस सबको, एक रहस्य का चक्कर छोड़ो, आप संत बन जाओ। तो वो मान जाते हैं तुरंत, और वहां से आते ही लौट के, और दक्ष महाराज इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे अभी, फिर प्रजाजनन होगा। और पता चलता है कि नारद मुनि के वजह से हमारे 10,000 पुत्र जो अच्छे काम के लिए गए थे, योग्य बनकर आकर गृहस्थी बनने वाले थे, नारद मुनि ने हमारे कार्य को भंग कर दिया है। पूरा हमारा प्रोजेक्ट जो है इतना लंबा चौड़ा, उसको फेल कर दिया है। तो वो नारद मुनि को शाप देते हैं कि आप किसी भी जगह पर 3 दिन के ऊपर रह सकते नहीं हो। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रचार करने को समय लगता है। समझो किसी व्यक्ति को प्रचार करना है तो टाइम चाहिए ना उसके लिए, बहुत टाइम मिलेगा उसके साथ में तो अच्छा प्रचार करके उसको एक ही मीटिंग में, एक ही सेशन में उसको आप परावर्तित कर सकते हो, उनका हृदय परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन अगर समय आपके पास नहीं है तो आप बोलेंगे अरे ट्रेन में मिले थे, सफर में थे, 24 घंटा में इतने जगह थे, उसमें 2-3 घंटे में कुछ बताया, फोन नंबर लिया, बाद में भूल गए, फिर वो प्रचार नहीं हुआ। लेकिन समझो एक जगह पर 10 दिन रहे साथ आप, तो उसमें बहुत अच्छा प्रचार हो सकता है समय के लिए। तो वो समय ही काट दिया उन्होंने, क्योंकि आपको ऐसा मैं श्राप देता हूं कि आप एक जगह पर 3 दिन के ऊपर रह ही सकते नहीं। इसलिए नारद मुनि, अभी आप कहेंगे श्राप दिया तो आप दुखी हो जाएंगे, लेकिन नारद मुनि बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? अरे 3 दिन में एक जगह, मतलब मैं दुनिया भर में कहीं भी घूम सकता हूं जब चाहे, 3-3 दिन के हिसाब से मैं सब जगह, ऐसा अपने इस्कॉन में कैसे है, लाइफ मेंबर बनने के बाद में हर मंदिर में 3 दिन रह सकते हैं आप। पूरे यूरोप का, पूरे अमेरिका का प्लानिंग कर सकते हैं, एक एक मंदिर के बाद 3-3 दिन का बुकिंग कर सकते हैं, पूरे यूरोप, पूरे अमेरिका घूम सकते हैं। एक मंदिर में आप 3 दिन रह सकते हैं, ज़्यादा नहीं रह सकते, लेकिन इतने हमारे मंदिर हैं कि आप एक 3-3 दिन करके पूरा विश्व, हरे कृष्ण वर्ल्ड का आप यात्रा कर सकते हो। तो नारद मुनि इस प्रकार से खुश हो गए। तो जो साक्षात्कारी व्यक्ति होता है ना, वो कभी भी शाप को देख कर दुखी नहीं होता है। इस जैसे हमारे चित्रकेतु हैं, उनको पार्वती ने शाप दिया कि तुम राक्षस बनोगे, तो वो एकदम आनंदी होकर आया नीचे। वो हवाई जहाज से जा रहा था, उसने शिव जी को, पार्वती को एक साथ बैठे हुए देखा, पार्वती शिव जी के गोद में है, शिव जी सन्यासियों को विरक्ति का प्रवचन दे रहे हैं और अपनी सुंदर पत्नी को गोद में लेकर बैठे हैं। तो उनको ऐसे ऐसे क्या कहते हैं उसको, छद्मी रूप से हंसे नहीं, वो एक क्या कहते हैं, सराहना के भाव ने ऐसे स्माइल दिया उन्होंने, ऐसे हंसी उन्होंने प्रकट की जैसे वाह क्या बात है, क्या दिव्य बात है, देखो अपने शिवजी महाराज अपनी सुंदर पत्नी को गोद में लेकर सन्यासियों को विरक्ति का प्रवचन दे रहे हैं और वो सन्यासियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये क्या सीन है, कैसा प्रवचन कर रहे हैं? नहीं, उनको पता है कि गोद में लेने पर भी इतने विरक्त हमारे गुरु हैं शिवजी महाराज, तो वो आराम से उनका, उनको कोई आपत्ति नहीं है। तो वहां से वो देखते हैं कितना बढ़िया सीन है ये, देखिए आप सारे विरक्त लोग, सन्यासी लोग बैठकर शिवजी को अपनी पत्नी में गोद में लेते हुए स्थिति में उनसे विरक्ति का उपदेश ले रहे हैं। लेकिन जब ये हंसे तो पार्वती को तो प्रवचन नहीं दे रही थी, प्रवचन देने में शिवजी बिजी थे, पार्वती फ्री है, यहाँ वहाँ देख रही थी, देखती वो हंस रहा है तो उसको शाप देती है तुम राक्षस बन जाओगे। तो वो अपने विमान से एकदम नम्रता से नीचे आए, बड़ी खुशी से नीचे आए और दंडवत किया पार्वती जी को। उन्होंने कहा पार्वती महारानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका वचन जो है मेरे लिए बहुत कल्याणकारी है, ये मेरे लिए शाप है ही नहीं, मैं बहुत आपके लिए आभारी हूँ, आपका ऋणी हूँ। तो पार्वती को आश्चर्य हुआ, अरे मैं तो क्रोध से उसको दुखी करने के लिए शाप दिया था क्योंकि उसने ऐसे हंसी प्रकट की थी। तो वो शिवजी से को देखती है, तो शिवजी कहते हैं कि देखो आप जानते नहीं हो ये विष्णु के भक्त कैसे होते हैं, हाँ देख लो आप, इनके लिए स्वर्ग भी एक ही जैसा है, नरक भी एक जैसा है, राक्षस का शरीर भी एक जैसा है, देवता का शरीर भी एक जैसा है, आप जो जहाँ रखो, जिस प्रकार रखो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यमराज भी अपनी यमदूतों को ऐसा वर्णन बता रहे हैं वैष्णवों के बारे में, कैसे भगवान के भक्त हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कुछ दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि वो आप कहीं पर उनको रखो, नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, पृथ्वी पर रखो, मानव में रखो, राक्षस में रखो, कहीं भी रखो, ये हमेशा मेरा भजन ही करते रहते हैं भगवान का और आनंद में ही रहते हैं, उनको कोई दुख होता नहीं है। प्रहलाद देखो, जन्म हुआ राक्षस की माँ की गोद से और पूरा जीवन रहना पड़ा राक्षसों के बीच में, राक्षस के गुरुकुल में विद्यालय में पढ़ना पड़ा, लेकिन प्रहलाद को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, उल्टे वो जहाँ थे वहाँ पर राक्षस के बच्चों को उन्होंने कीर्तन में लगाया, भक्त बनाया। हिरण्यकशिपु शंड अमर्क सब चकित हो गए, अरे ये क्या चीज़ है, कौन आ रहा है सिखाने के लिए? शायद हम लोग जो विश्राम दोपहर में करते तभी कोई देवता आता होगा सिखाने के लिए, तो नहीं उधर भी कोई आता नहीं है, किसी को प्रवेश नहीं है, पर इतना इतना कम तटबंदी बना के रखा है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता है हिरण्यकशिपु के किसी भी दरबार में किसी भी लोक में प्रवेश करे। और ये तो विशिष्ट गुरुकुल है हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, यहाँ पर वो कैसे आ सकते हैं? बाद में नतीजा क्या निकला, पहले लगा कि वो आके सिखाते होंगे, कहीं सत्संग पहले किया होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, बाद में सारे ऑब्जर्वेशन के बाद में नतीजा क्या निकलता है, अरे ये खुद ही भक्त है भगवान का, अपने आप में साक्षात्कारी भक्त है भगवान का, ये खुद के ही प्रभाव से सब कुछ कर रहा है, इसको बाहर से कोई प्रभाव की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रभाव लेना था वो तो जब नारद मुनि के आश्रम में मेरी माँ मतलब मेरी पत्नी कयाधु जब गर्भवती थी इस बच्चे के लिए, तभी वो जो प्रभाव लेना था नारद मुनि से वो ले चुका है, उसके बाद मेरे को नया प्रभाव की आवश्यकता नहीं है, वो संत बन चुका है, परम वैष्णव बन चुका है, और इतना परम वैष्णव बन चुका है कि कोई चीज़ उसको स्पर्श नहीं कर सकी, जिसके भवे उठाने से देवता लोग कांपते थे वो भी उसको भयभीत नहीं कर सका, उल्टा उसको उपदेश दे रहा है। देखो क्या लिखा है, तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहि नाम ला समुद्वग्न ध्याम असद्ग्रहात। कह रहा है पिताजी ये सब छोड़ो, आप वृंदावन में चले जाओ, वन में प्रवेश करो, वहां पर जाके रहो, ये सब गृहस्थी के गृहमंदकूपम हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम, इसमें पढ़ो, क्यों पढ़ रहे हो आप, इसमें आप सड़ते रहोगे, कष्ट भोगते रहोगे, हमेशा अतृप्त रहोगे, असंतुष्ट रहोगे, इसलिए छोड़ो आप चले जाओ। उसको इतना गुस्सा आता है, मुझे उपदेश कर रहा है, मेरी भवे उठाने से देवता लोग कांपते हैं और ये 5 साल का बालक मुझसे भयभीत नहीं होता है और मुझे उपदेश करने का साहस करता है। एक बार नहीं कितनी बार उपदेश किया है, अगली बार बुलाए तो बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अरे बाप रे, क्या चल क्या रहा है? तो चित्रकेतु का उदाहरण से हमारी ये बात निकली। तो चित्रकेतु के उदाहरण से शिवजी पार्वती को समझा रहे हैं कि आप उनको कुछ भी दो, शाप दो या वरदान दो, उनके लिए सब समान है। तो दुर्वासा मुनि के लिए आप 56 भोग का इंतजाम करो या दुर्वा देव खाने के लिए, दोनों एक ही भाव से खाते हो, ना जलेबी जलेबी भाव के भाव से खाते हैं, ना कोई पकवान अपने भाव से खाते हैं, जो आता है वो दुर्वा का रस है, यही सोच के खाते हैं, उसी भाव से खाते हैं, उनको किसी भी भोजन का कोई परिणाम उनके अंदर नहीं होता है, क्योंकि उनकी चेतना ऐसी है कि सभी भोजन को वो दुर्वा के रस के रूप में देखते हैं, उसी के रूप में उसी भाव से ग्रहण करते हैं। तो आप उनको शाप दो या वरदान दो, वो ग्रहण एक ही भाव से करेंगे, धन्यवाद के भाव से, कृतज्ञता के भाव से। तो नारद मुनि को शाप मिला, उन्होंने तो डांस करना शुरू किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो शाप देने वाला भी दंग रह जाता है, कह रहे मैं चाहता कुछ हूँ कि इसको क्रोधित करूँ, उसको दुखी कर दूँ, उसको पीड़ित कर दूँ, लेकिन जो जिसको शाप दिया जा रहा है वो तो आनंद में मस्त है, इसलिए वैष्णव बनना चाहिए। वैष्णव जब हम बनते हैं तो स्वर्गम अपि नरकेशु तुल्येषु, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुख हो या सुख हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी कविता लगती है हमको ये जब सुनने के लिए, वाह वाह क्या स्थिति है, कोई दुख का परिणाम नहीं, कोई सुख का परिणाम नहीं, लेकिन ये हकीकत है, ये वास्तवता है, जिसके कारण ये जो दो चीजें इसके अंदर, एक है परमहंसों का संग मिला उनको और दूसरा सदगुरु का उपदेश प्राप्त हुआ। हमारे जीवन में भी अगर हमको ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है जो एकदम ऐसे यहां से मुक्त होकर विष्णु को भगवान को प्राप्त करने के लिए योग्य स्थिति है, अगर प्राप्त करनी है तो एक जो है वो परमहंस पुरुषों का संग प्राप्त होना चाहिए, और प्राप्त तो होता ही रहता है, हमको वो लेना चाहिए जब मिलेगा तब, उसके बाद में सदगुरु का दर्शन होगा, उसका अनुग्रह होगा, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप हो जाती है जब आप सद्गुरुओं का परमहंस पुरुषों का संग करते हैं, उनके वचन सुनते हैं, उनको जीवन में उतारते हैं, तो आप शुद्ध हो ही जाएंगे, और जब जैसे ही आप शुद्ध हो जाते हैं सद्गुरु भगवान की तरफ से आपको मिलते हैं, आपके जीवन में आते हैं, उनके आपका आपके जीवन में उनका प्रवेश होता है, उनका अनुग्रह होता है, उनकी दीक्षा प्राप्त हो जाती है, उनके आज्ञा पालन में जीवन बीतते लगता है। और ये मार्ग ऐसा है कि एक दिन आप ये मार्ग को अपनाएंगे और इस मार्ग पर श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक चलेंगे तो निश्चित रूप से आप एक दिन ऐसी अवस्था में आएंगे कि शाप हो या वरदान, दुख हो या सुख, मान हो या अपमान, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये स्थिति क्यों होनी चाहिए, क्या लाभ है इस स्थिति से? या कहीं आपको डिग्री मिलेगी जाकर, या कई लोग सम्मान करेंगे कि ये देखो ये व्यक्ति जो मान सम्मान के परे हैं। नहीं, जब हम लाभा लाभो जया जयो दुख सुख के मात्रा स्पर्शन तो कौनते या इसके पार चले जाएंगे ना, तो उस स्थिति में भगवान का दर्शन होता है, उस स्थिति में भगवान का साक्षात्कार होता है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। कोई स्वार्थी लाभ नहीं है वो, हमारे जीवन का उद्देश्य हमारी क्या कहते हैं स्वाभाविक स्थिति है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है हमारी, वो जिसको हम सब लोगों को प्राप्त करना चाहिए। अगर हम लोग सब लोग साक्षात्कारी पुरुष और स्त्री हो गए तो हमने कुछ बड़ा कार्य नहीं किया है, हमने केवल जो हम थे उस स्थिति में वापस आ गए हैं। अभी उस स्थिति में नहीं है, गलत स्थिति में है, दूसरी स्थिति में है जो नहीं होना चाहिए। उसमें अगर नॉर्मल में आ गए, समझो एक डॉक्टर है, वो डॉक्टरी पढ़कर कहीं सीमेंट बेच रहा है, उसका बड़ा बिजनेस है, तो एक दिन वो बंद करता है, बोलता है अभी मैंने ये सब क्यों कर रहा हूँ, मुझे डॉक्टरी करनी चाहिए, वो बढ़ के आया था मैं, और वापस दवाखाना खोलता है, तो उसको बड़ा कार्य नहीं किया है, जो उसको करना चाहिए था वो कर रहा है, अभी तक नहीं कर रहा था अभी करने लगा है। वैसे हम लोग हमारे स्वभाव के अनुसार, स्थायी भाव के अनुसार हम सबको परम वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि हम स्वभावतः मूल रूप से परम वैष्णव हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको भवनाम विदधाति कामान, हम सब लोग नित्य रूप से भगवान के सेवक हैं, नित्य रूप से परमानंदी है, सच्चिदानंद है, नित्य रूप से हम भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं, हमारा स्वभाव है ये। उसको भूलकर अभी हम किसी आवरण से आवृत्त होकर कोई गलत कार्य कर रहे हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से हम दुख भोग रहे हैं, और ये सब छोड़कर परमहंसों का संग करके, सद्गुरु का अनुग्रह प्राप्त करके, भक्ति के मार्ग में आकर अगर हम दोबारा इस स्थिति में आते हैं सुख दुख और मान सम्मान के परे जाकर, तो उस स्थिति में हमारी भगवान की मुलाकात होती है। भगवान सब जगह पर है, वो सब जगह पर हमें इस साक्षात्कार देने के लिए उत्सुक हैं, हम लोग उसके योग्य अभी तक नहीं है, इसलिए हमको वो साक्षात्कार नहीं हो रहा है। तो बड़ा विस्तार का श्लोक है, आप आगे सुनते जाइए, छोड़िए मत उसको, लेकिन यहाँ पर इतना ही कह सकते हैं कि परमहंसों का संग हर एक मनुष्य जीव के लिए प्राप्त है। ये मत समझना कि हम तो गरीब है, हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ है, हम उस जाति के हैं, हम इस देश के हैं, हम इस समाज के हैं। जो जो मनुष्य है उसके लिए भगवान ने परमहंसों के संग की व्यवस्था करके रखी है। जैसे ही मनुष्य मुमुक्षु यानी उद्युक्त हो जाता है, उसके लिए उसकी खोज का प्रश्न उसके मन में आता है कि क्या है ये, मुझे जानना है, तो उस समय परमहंसों का संग प्राप्त होता है। तो आप कहेंगे मैं तो अभी एक ही परमहंस से मिला नहीं अब तक। परमहंस का संग अनेक प्रकार का होता है, जरूरी नहीं कि वो आपको प्रत्यक्ष मिले और प्रत्यक्ष आपको आपका संग मतलब उनका संग आपको दे दें, वो जाने के बाद भी उनका संग हो सकता है, उनकी वाणी के माध्यम से, उनके ग्रंथों के माध्यम से, उनके उपदेशों को जो दोहरा रहे हैं उनके संग से भी आप उनका संग कर सकते हो, जिन्होंने वो कहा था जिसकी वाणी वो दोहरा रहे हैं, है कि नहीं? प्रभुपाद का संगम कर रहे हैं कि नहीं? रोज कर रहे हैं, देखो अभी भी कर रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ा वो क्या है? प्रभुपाद जी का संग है, प्रभुपाद जी ने कहा है, उसको लिखित यहाँ पर सूक्ष्म रूप में ग्रंथ के रूप में लिखा गया है, उसको जब पढ़ रहे हैं तो उनकी वाणी दोहराई जा रही है और हम सब उस वाणी का संग कर रहे हैं, उसमें से हमको जो अच्छा है हमारे लिए वो ग्रहण कर रहे हैं, हमारे जीवन को क्या कहते हैं उसको भक्ति की वृद्धि कर रहे हैं, समृद्धि भक्ति की आध्यात्मिक समृद्धि निर्माण कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये मत समझना कि अरे हमें तो संत मिले ही नहीं, हम तो हिमालय में कभी गए नहीं। संत जो है अधिकतर शरीर से भी अधिक वाणी से उपस्थित रहता है, परमहंस पुरुष जो है अपनी वाणी से सदैव जीवित रहते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद जी ने कहा है कि जो समझता है कि वैष्णव चला गया वो मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि वैष्णव अपनी वाणी और उपदेश अपने जीवन के चरित्र के माध्यम से सभी आने वाले अनंत पीढ़ियों के मनुष्यों के लिए सदैव जीवित रहते हैं। जो जो उनके कनेक्ट करेगा वो उनका उपदेश प्राप्त करेगा, उनका संग प्राप्त करेगा, और जैसे उनके व्यक्तिगत संग में बैठने से लाभ होता है वैसा ही उसके वाणी से लाभ करेगा। और हकीकत यह है कि संग से जितना लाभ नहीं होता है व्यक्तिगत, उससे अधिक लाभ जो है वो वाणी के संग करने से होता है। गुरु जी के पास में कोई व्यक्ति रहेगा, गुरु जी को सामान्य व्यक्ति के रूप में देखेगा, ये भी तो लैटरिन करते हैं, ये भी तो खाना खाते हैं, ये भी तो सोते हैं, इनको भी क्रोध आता है कभी, इनको भी ये होता है, इनको भी वो होता है, इनको बुखार भी आ रहा है। अधिक नज़दीक होने से क्या होता है, कभी कभी हम संत के रूप में विचार विपरीत कर लेते हैं। तो एक डेंजरस स्थिति है कि एक संत के साथ बहुत नज़दीक रहना फिजिकल, जब हम लोग उसके योग्य नहीं है तो थोड़ा सा हमारे चेतना में अंतर आ सकता है दुर्भाग्य से, लेकिन वाणी सुनेंगे तो वो अंतर नहीं आ सकता है। अरे उनको बुखार आया था, उनको भी लैटरिन हो गया, उनको भी गुस्सा आया था, उस समय उनको लोटा नहीं मिला था, वैसा हो सकता है, लेकिन जब वाणी सुन रहे हैं तो आपको वो विकार आपके मन में नहीं आएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि हम संतों का संग वाणी से अधिक करें, और जब हमारी चेतना योग्य हो जाती है तो हमको प्रत्येक संग भी प्राप्त हो जाएगा, तो वो संग हम कर सकते हैं। लेकिन बेस लाइन क्या है, वाणी से हो या बापू से हो, शरीर से हो या उनके उपदेश से हो, संग जरूर करना चाहिए। और संग उपलब्ध है, बताइए प्रभुपाद जी का किताब किसको उपलब्ध नहीं है। अरे हम लोग तो दिसंबर में सबको जाके सर पे पटकते हैं, ले लो किताब, ले लो उसको पढ़ो। आप लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास गरीबी है, हमारे पास समस्याएं, हम नहीं पढ़ सकते उसको, पहले पेट में अन्न डालो फिर हमको गीता दो। इसका मतलब क्या है, सबके लिए ये उपदेशों का ग्रंथ उपलब्ध है, जाके भक्त लोग बांटते हैं, कुछ लोग साल भर बांटते हैं, दिसंबर छोड़ो। तो मेन सारांश यह है कि मनुष्य के जीवन में अगर परमहंस सिद्ध वैष्णव महात्माओं का सत्संग नहीं करेंगे तो ये जीवन शव समान है, एक मुर्दे के समान है। और वो प्राप्त होने के बाद में मनुष्य जीवन आरंभ होता है, और वो मनुष्य जीवन आरंभ के होने के बाद भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि परमहंसों के उपदेशों को जब ग्रहण करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो फिर एक दिन हम लोग सद्गुरु के अनुग्रह के योग्य हो जाएंगे, फिर वो अपने आप भगवान की इच्छा से अपने जीवन में प्रवेश करेंगे, फिर हमारा उनका संबंध होगा, वो हमको स्वीकार करेंगे, हम श्रद्धा रखेंगे उनके ऊपर कि हमें भगवत धाम ले जाएंगे, और फिर वो जीवन शुरू होगा। जो कहते हैं ना, वो आखिरी ट्रेन है, वो 10 ट्रेन पकड़ के आप वहाँ आ चुके हो, अभी वहाँ से आप आखिरी ट्रेन पकड़ के आपके लास्ट स्टेशन पहुँचने वाले हैं, वो आखिरी ट्रेन है। जब एक बार आपने वो ट्रेन पकड़ ली गुरु जी की, फिर आपका अंतिम गंतव्य स्थान भगवान के चरण कमल ही है, भगवान का धाम ही है। ये मार्ग हमको सबको अपनाना है, और ऐसा मत समझना, अभी कुछ लोग समझते हैं कि हमने 4 ट्रेन पकड़ के वो आखिरी ट्रेन के पहले स्टेशन पे पहुंच गए, अभी ट्रेन में बैठ रहे हैं, अभी हमको कोई चिंता की जरूरत नहीं, अपने आप पहुंच जाएंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको भी कुछ करना है उसके अंदर। कुछ लोगों को लगता है अभी दीक्षा हो गई ना, दीक्षा तक ही सब मेहनत करनी थी, दीक्षा के बाद में क्या मेहनत करनी है, मेहनत गुरु जी को करनी, हमने उनका नाम दर्ज करी हमारा, अभी गुरु जी का कर्तव्य हमको उठा के ले जाए भगवान के धाम में, नहीं। ये दो पटरी का रास्ता है, एक पटरी गुरु जी की कृपा है, एक आपका प्रयास है। ये दामोदर मंत आएगा, हम लोग सीखेंगे उसके बारे में दोबारा एक बार, कि हमारे प्रयास के बिना कृपा नहीं होती है गुरु जी की भी, अनुग्रह प्राप्त करने के बाद भी वो कृपा नहीं होगी आपके ऊपर जब तक हम उसका प्रयास नहीं करेंगे उनकी इच्छा के अनुसार। जब उनकी इच्छा के अनुसार प्रयास करेंगे तो उनकी कृपा स्वतः हमारे पास पहुंच जाएंगी, और हमारे प्रयास और उनकी कृपा के माध्यम से हम अंतिम गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे, ये उसका सार है। तो नारद मुनि यहाँ पर उनको परावृत्त कर रहे हैं क्योंकि वो उसको योग्य थे। क्या उन्होंने ध्रुव महाराज को कहा था क्या, तुम विवाह मत करो, प्रहलाद को कहा था विवाह मत करो, लेकिन इन लोगों को कहा क्योंकि इनके लिए अनुकूल था। ऐसा नहीं कि प्रहलाद जी और ध्रुव जी उसके योग्य नहीं थे, योग्य थे, लेकिन किस जीव के लिए कौन सी सेवा अनुकूल है ये साक्षात्कारी जीव बराबर जानता है। वाल्मीकि को क्या कहना है, उस जो स्वपच था उस समय उनको क्या कहना है, ध्रुव जी को क्या कहना है, प्रहलाद को क्या कहना है, मृगरारी जो शिकारी था उसको क्या कहना है, ये साक्षात्कारी पुरुष ठीक से जानता है एग्जैक्टली क्या आदेश देना है उसको, जो आदेश उसको भगवत धाम को भगवान के चरणों से मिलाने के लिए योग्य हो। इसलिए हम प्रभुपाद जी के जीवन में भी विविध प्रकार के आदेश अनेक शिष्यों को देते हुए प्रभुपाद को देखा है हमने। किसी को संन्यास लेना था तो विवाह करने को बोला, किसी को विवाह करना था संन्यास लेने को बोला, क्योंकि ये प्रश्न करने का और क्या विश्लेषण करने का विषय नहीं है, एक और पालन करने का विषय है। गुरु जी की आज्ञा मुझे ऐसी क्यों दी गई, ये प्रश्न विवेचन करने का कोई हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। वो जब आदेश आता है तो केवल पालन करना हमारा जीवन का धर्म है, और वो पालन करेंगे बिना तर्क के तो हमारा जल्दी कल्याण हो जाएगा, तर्क करते रहेंगे तो हम लोग उधर ही फंसेंगे। आदेश, आदेश क्या होता है गुरु जी का, आदेश गुरु जी का पालन करने की जो क्रिया है वो सीधे भगवान के चरणों से संपर्क करने की क्रिया है, और तर्क करते रहेंगे तो संपर्क नहीं होगा, आदेश मिलने के बाद भी संपर्क नहीं होगा। इसलिए एक भक्त के लिए अगर एक वाक्य में जीवन का सार कहा जाए, एक वाक्य में अगर कहा जाए तो वो ये है, गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया एक। इतना अगर हमको समझ में आया ना, बाकी पूरा वेदों का ज्ञान और पूरा ये सब समझने की आवश्यकता नहीं है। इतना समझ में आया तो हम सबसे अनपढ़ से अनपढ़ हो सकते हैं, गरीब से गरीब हो सकते हैं, कुरूप से कुरूप हो सकते हैं, पतित से पतित भी होंगे, लेकिन अगर आपके जीवन में आपको ये समझ में आया है कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया एक, चित्त को एकाग्र करके गुरु जी की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है, ये आपको समझ में आएगा तो सबसे पतित होने पर भी सबसे पहले हम भगवान के दरबार में पहुंचेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का, कोई टीका टिप्पणी शंका? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो।